بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب حاصل ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں عمیر احمد. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321 2138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. انتصاب اللہ کے نام. پیش لفظ. صاحب کتاب ہونا رائٹر کی ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے اور میں نے ہمیشہ اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید اب مجھ کو یہ ذمہ داری اٹھانے کی عادت اپنا لینی چاہیے. اس کتاب میں وہ تحریریں ہیں جو پہلے شائع ہو چکی ہیں، انہیں ملنے والے رسپانس سے بھی آپ واقف ہیں. ان تحریروں کے بارے میں میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ میرے پچھلے 3 سال کی نسبتاً بہتر تحریریں ہیں. بہترین نہیں، بہترین اس لیے نہیں کیونکہ بہترین کے بعد خلا آ جاتا ہے اور میں ابھی کسی خلا میں پیر نہیں رکھنا چاہتی. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زندگی کے کچھ اور رنگ دکھاؤں یا زندگی کو اس اینگل سے دکھاؤں جہاں سے میں دیکھتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ رنگ بہت پھیکے یا ضرورت سے زیادہ گہرے لگے. یہ بھی ممکن ہے کہ میرا اینگل چیزوں کو یا زندگی کو اس طرح آپ کے سامنے پیش نہ کر سکے جس طرح آپ چاہتے ہیں، مگر بہرحال دنیا پر موجود 6 ارب انسانوں میں کم از کم ایک انسان زندگی کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے اور وہی رنگ دنیا کے کینوس پر بکھیرنا چاہتا ہے جو ان کہانیوں کے کردار استعمال کرتے ہیں اور وہ انسان میں ہوں. یہ وہ تحریریں نہیں ہیں جو اگر میں نہ لکھتی تو کوئی بھی نہ لکھ پاتا. اگر میں انہیں نہ لکھتی تو کوئی بھی لکھ سکتا تھا اور شاید مجھ سے زیادہ بہتر لکھتا. بہت سے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ لکھنا یا کہنا انسان کو بہت خوشی دیتا ہے، مگر صرف اپنی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی بات کہنا یا لکھنا اس سے زیادہ خوشی دیتا ہے. ان تحریروں میں میں نے اپنی بات کہی ہے یا لکھی ہے. ان کو پڑھتے ہوئے شاید آپ انہیں اپنی بات سمجھیں. آئیے زندگی میں داخل ہوتے ہیں. عمیرہ احمد. ایکسکیوز می سسٹر. روش پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزبتھ کی طرف اور انہیں روکتے دیکھا تھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا. وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا. اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی. اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھی. شاید وہ اس بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا. اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے ہلکے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے. اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا. یور نیم؟ سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے اسے پوچھا تھا. محمد حدید. اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا. سسٹر الزبتھ نے بے اختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا. چند سیکنڈوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی. سسٹر الزبتھ ایک دم محتاط ہو گئی تھی. ان کی آواز قدرے مدھم ہو گئی تھی. آپ کو فادر سے بات کرنا چاہیے، انہوں نے اسے کہا تھا. اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا. سسٹر الزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھی. کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے. پھر اس نوجوان نے اپنا والٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا تھا. سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا. وہ کسی ڈمی کی طرح وہ سب کچھ دیکھتی رہی تھی. اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی تھی. گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی اور ہاتھ میں باندھی ہوئی کرسٹن ڈائر کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے. اور اگر روپیہ پاس ہے اور روپیہ کمانے کے لیے کسی باہر کے ملک کے ویزے، وہاں سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ ये सब क्यों करना चाहता है। वो अभी भी उलझी हुई थी। चंद मिनटों बाद उसने इस नौजवान को वॉलेट जेब में डालकर वापस उसी बेंच की तरफ जाते देखा था और सिस्टर एलिजाबेथ को अपनी जानिब आते देखा था। उनकी वापसी पर किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया था। रविश पर फिर पहले की तरह सबकी चहलकदमी शुरू हो गई थी, मगर वो वहां से जाना नहीं चाहती थी। उन लोगों के साथ चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा था। वो लड़का अब भी उसी बेंच पर बेंच की पुश्त से टेक लगाए चेहरा ढांपे बैठा हुआ था। बेख्तियार इसका दिल भाग कर उसके पास जाने को चाहा था, सिर्फ एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक बात कहने के लिए। उसने मुड़कर अपने आगे चलते हुए ग्रुप को देखा था और खुद को बेबस पाया था। वो पीछे जाना चाहती थी वापस नहीं, मगर वो आगे चलती जा रही थी। उसे पता था ये रविश सीधा इस पार्क से बाहर ले जाएगी और वो वापस वहां नहीं आ सकेगी। उसे जो भी करना था बहुत जल्दी में करना था, मगर उसे आखिर क्या करना था। रविश पर चलते चलते वो घास पर चलने लगी थी। बड़े नामहसूस तरीके से उसने अपने जूते उतार दिया और फिर उसी तरह सब लोगों के साथ चलती रही। एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा था। बहुत दूर बेंच पर अब वो एक नुक्ते की सूरत में नजर आ रहा था, मगर वो वहां था। वो लोग गेट के पास पहुंच गए थे। ओह गॉड सिस्टर, मैं अपना जूता तो वहीं घास पर भूल आई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नंगे पांव चल रही थी, उसने सिस्टर एलिजाबेथ से कहा था। कहां उतारा था? सिस्टर ने कुछ तश्वीश से देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो दरख्त के पास जो झाड़ी नजर आ रही है वहीं से गुजरते गुजरते मैंने जूता उतारा था। मेरा ख्याल था हम वापस उधर से ही गुजरेंगे तो मैं जूता पहन लूंगी, मगर फिर आपने इस गेट से निकलने का फैसला कर लिया। मैं बस 5 मिनट में लेकर आती हूँ, उसने चलते हुए कहा था। सिस्टर ने आइसक्रीम की मशीन की तरफ जाते हुए कहा था। वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई थी। रविश पर चलने के बजाय उसने घास पर भागना शुरू कर दिया था। वो जल्द अज जल्द इसके पास पहुंच जाना चाहती थी। चंद मिनट भागने के बाद इसने सर उठाकर उस नजर आने वाले बेंच को देखा था जिस पर वो बैठा हुआ था, मगर अब वो बेंच खाली नजर आ रहा था। उसे बेख्तियार ठोकर लगी थी। इस बेंच के करीब बेंच भी खाली नजर आ रहे थे। वो बेख्तियार आगे भागती चली गई। इसने पार्क की रविशों पर चलते लोगों में से ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उसे नजर नहीं आया था। उसने बेख्तियार भागकर गेट से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी चादर का एक कोना गेट में अटक गया था। वो उसे छुड़ाने में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। नंगे सर और नंगे पैर भागती हुई वो गेट पार करके बाहर निकल गई थी। गाड़ी तब तक एक जन्नाटे के साथ टर्न करके सड़क पर पहुंच चुकी थी। जब तक वो सड़क पर पहुंचती तब तक कार इसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने बेबसी से दूर जाती हुई कार को देखा था, फिर एक ठंडक सी उसके जिस्म में उतरती गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो गेट के बाहर और अंदर जाने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। उसे नजरों की परवाह नहीं थी, उसे इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। गेट के करीब आते ही उसने चौकीदार के हाथ में अपनी चादर देख ली थी। उसने उसे देखकर चादर इसकी तरफ बढ़ा दी थी। होंठ बीछते हुए उसने चादर लेकर ओढ़ ली थी। क्या बात है बीबी, क्या हुआ है? चौकीदार मुतजस्सिस था, उसने जवाब नहीं दिया, चुपचाप अंदर चली गई। रविश से घास पर उतरकर उसने मतलूबा जगह जूता तलाश करने की कोशिश की थी। उसे जूता नहीं मिला तो वो जगह भूल गई थी, या तो वो जगह भूल गई थी या फिर कोई जूता उठा चुका था। चंद मिनट वो घास पर बेदिली से जूता ढूंढती रही और फिर वापस उस गेट की तरफ चल दी जहाँ सिस्टर इसका इंतजार कर रही थी। घास पर चलते चलते उसने अपने पैर में कोई चीज चुभती महसूस की थी। वो रुक गई थी, उसने पैर उठाकर देखने की कोशिश की थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि पांव में क्या चुभा था। अब वो घास से हटकर रविश पर चलने लगी थी। तुमने परेशान कर दिया, इतनी देर में तो डर गई थी, अभी तुम्हारे पीछे आने वाली थी, सिस्टर एलिजाबेथ ने उसे देखते ही कहा था। तभी उनकी नजर इसके पैरों पर पड़ी थी। क्या हुआ, जूता नहीं मिला? उन्होंने कुछ हैरान होकर पूछा था। उसने सर की जुम्बिश से इनकार किया था। सिस्टर ने इसके चेहरे को गौर से देखा था और फिर कुछ मुतफिक्र हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ सिस्टर, कुछ भी नहीं हुआ, बस जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला। हालांकि मैंने तो यकीन करे मैंने तो बहुत बहुत कोशिश की थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो बड़बड़ाई थी। सिस्टर एलिजाबेथ ने इसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी को देखा था और फिर इसके गाल छूते हुए उसे जैसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। कम ऑन, एक जूते के गुम हो जाने पर इतनी परेशानी की कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कई दफा ऐसा हो जाता है, मगर इसमें रोने वाली कौन सी बात है, अभी रास्ते से दूसरा जूता खरीद लेंगे, सिस्टर एलिजाबेथ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। बाकी सिस्टर्स ने भी उसे तसल्ली दी थी और फिर उसे चेयर अप करने की कोशिश करने लगी। वो आंखों में तैरती हुई नमी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। पिछले कई दिनों से वो सिस्टर अलिजबेथ के दिए हुए पते पर जा रहा था। फादर जोशुआ के पास जाकर इसने उन्हें सब कुछ कह दिया था। इसके साथ क्या हुआ था, वो खुद को क्या समझ रहा था, उसका जहनी खुलजान। उसने हर चीज खुलकर बताई थी। फादर जोशुआ ने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से इसकी सारी गुफ्तगू सुनी थी और फिर देर तक उसे ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट से कुछ चुनी हुई बातें बताते रहे। हजरत ईसा की मसीहाई और मौजात, मदर मैरी की बेगुनाही और पाकबाजी, उनकी आजमाइशें, हजरत ईसा की तनहा जिंदगी जो उन्होंने लोगों के लिए वक्फ कर दी थी और फिर उन्हीं लोगों के हाथों उनका दार पर चढ़ाया जाना, वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह उनकी बातें सुनता रहा था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था जैसे वो यही सब कुछ सुनना चाहता था, यही सब कुछ जानना चाहता था, यही सब कुछ महसूस करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए फादर, मैं किसी फैंसिकल गेंस FINANCIALGAINS माली मुफाद के लिए इधर नहीं आया, मैं तो सिर्फ सुकून चाहता हूँ। मेंटल कॉम्प्रेसिस MANTALCOMPOSURE जहनी यकसुई की जरूरत है मुझे, और वो सब कुछ मुझे अपने मजहब से नहीं मिला, मुझे लगता है ये सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे रात को नींद आ जाए, मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ, मैं किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, वो बोल रहा था। फादर जोशुआ मुलायमत से मुस्कुरा रहे थे। तुम हर चीज हासिल कर लोगे मेरे बच्चे, हर चीज, मगर कुछ इंतजार करना होगा तुम्हें, और उस वक्त के दौरान तुम जितने साबित कदम रहोगे तुम्हारी आइंदा जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी। फादर मैं करूंगा, उसने इस तरह से फादर जोशुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा था। उन्होंने हाथ से इसके हाथ को नरमी से थपका था। फादर मैं जानता हूँ, मैं रोज आपके पास आकर आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। उसने उनसे इजाजत लेना चाही थी। श्योर तुम हर रोज मेरे पास आ जाया करो। और उस दिन के बाद से वो हर रोज उनके पास जा रहा था। एक डेढ़ घंटा वो उनके पास बैठा रहता, फिर उठकर आ जाता, मगर इस एक डेढ़ घंटे में उसके अंदर बहुत कुछ बदल जाता था। उसे अपने हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाता था। उसका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कम जरूर हो गया था। फादर जोशुआ ने उसे कुछ दूसरे पादरियों और सिस्टर्स से भी मिलवाया था, और इन सब से मिलकर उसे यूं लगता था जैसे इसका हाथ पकड़ने और उसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे, और हर एक पहले से ज्यादा मुखलिस था। उसे अपनी नई दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। चंद हफ्तों में वो बड़ी हद तक बदल चुका था। अभी उसने बाकायदा तौर पर मजहब तब्दील नहीं किया था, अभी वो फादर जोशुआ की दी हुई किताबें और पंफलेट्स पढ़ता रहता था। चंद हफ्तों के अंदर मजहब तब्दील करने का इसका फैसला मुस्तहकम हो गया था। जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो भी अब खत्म हो गई थी। एक डेढ़ हफ्ते तक बाकायदा तौर पर वो अपना मजहब तब्दील करने वाला था। 31 दिसंबर की रात को थैंक गिविंग प्रेयर के लिए वो कैथेड्रल आया था। वो कई दिनों से बाकायदा चर्च जाकर सर्विस अटेंड कर रहा था, मगर कैथेड्रल वो पहली बार आया था। सर्विस अभी शुरू नहीं हुई थी, लोगों का रश अंदर आ जा रहा था, पूरी कैथोलिक कम्युनिटी वहां इकट्ठी हुई थी, कम अज कम जो शहर में थे, गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। कैथेड्रल के लॉन्स में भी लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो सर्विस अटेंड करने के बजाय खुशगपियों में मसरूफ थी, क्योंकि साल का आखिरी दिन था और न्यू ईयर की तकरीबात पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो तायराना नजरों से सब लोगों का जायजा लेते हुए चर्च में दाखिल हो गया था। बेंचों की कतारों पर नजर डालते हुए उसने अपने लिए कोई खाली जगह तलाश करने की कोशिश की थी। अगली कतारों में कुछ जगह उसे नजर आ ही गई थी। वो एक बेंच पर जाकर खामोशी से बैठ गया, दुआ की किताब निकाल कर उसने हाथ में ले ली थी। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर उसने किताब बंद कर दी। एक अजीब सी उदासी उसके वजूद पर छा रही थी, उसे अपना आप इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो सब पैदाइशी ईसाई थे और वो पैदाइशी मुसलमान था, उनमें से हर एक उसे खुद से सुपीरियर लग रहा था। वो बहुत से कॉम्प्लेक्सेस का शिकार था, मगर इस तरह एहसास कमतरी उसे पहली बार हो रहा था। सर्विस की तैयारी जारी थी, उस पर एक अजीब सी थकन सवार थी। बेंच की पुछ से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली, तभी उसे एहसास हुआ था कि उसके बाएं जानेब कोई आकर बैठा था। उसने आंखें नहीं खोली थी, जानता था आहिस्ता आहिस्ता तमाम बेंचें लोगों से भर जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। उसने अपने करीब एक मध्यम पुरसुकून मगर अजनबी आवाज सुनी थी। उसने अब भी आंखें नहीं खोली थी। शायद ये जुमला किसी और से कहा गया है, उसने सोचा था। आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम है हदीद, आवाज वही थी मगर इस बार इसका नाम भी लिया गया था। उसने बड़क रफ्तारी से आंखें खोलकर अपने बाएं जानेब देखा था। उसके बहुत करीब सिया सूट में मलबूस एक लड़की बिल्कुल उसी की तरह बेंच की पुश्त से टेक लगाए और आंखें बंद किए बैठी थी। सिया चादर इसके सर को ढांपे हुए थी। सिया चादर की ओट में से नजर आने वाले चेहरे पर अजीब तरह का सुकून और ठहराव था, मगर इस कैफियत के बगैर भी वो बेहद खूबसूरत नजर आती। उसने गहरी नजरों से इसका जायजा लिया था और फिर उलझन का शिकार हो गया था। वो लड़की अब आंखें बंद किए टेक लगाए खामोश थी और वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो इससे मुखातिब हुई थी या उसे गलतफहमी हो गई थी। वो इसका चेहरा देखते हुए सोच रहा था। इससे पहले कि वो इसे कुछ पूछता, दफतन उसने आंखें खोल दी थी, मगर उसकी तरफ देखने के बजाय वो सामने लगे हुए होली क्रॉस को देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था मैं दोबारा तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, और दोबारा ना देखती तो। वो सामने देखते हुए इस तरह बोली जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। हदीद अब वाकई उलझन का शिकार हो गया था। देखिए, मैंने आपको पहचाना नहीं है, मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले, और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? इस बार पहली दफा उसने अपनी आंखें होली क्रॉस से हटाते हुए इस पर मरकूज कर दी थी। हदीद ने जिंदगी में बहुत सी आंखें देखी थी, ऐसी आंखें जो पहली नजर में बंदे को हिप्नोटाइज कर लेती थी, ऐसी आंखें जिन्हें आप बार बार देखना चाहते थे, ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती थी, जो कोई राज भी राज नहीं रहने देती, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर ये ख्याल आता है कि शायद दुनिया इन्हीं आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई है, हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली आंखें, सहर ज़दा कर देने वाली निगाहें। मगर उसने कभी भी इतनी उदास आंखें नहीं देखी थी। वो आंखें बंद किए बैठी थी तो वो सोच रहा था कि इसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जब उसने आंखें खोली थी तो उसने देख लिया था कि आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक, मगर अब इसकी नजर न दराज पलकों पर थी, न आंखों के रंग पर, बल्कि सिर्फ उदासी पर थी जो आंखों में थी। वो कुछ पजल हो गया था। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आपने मुझे कभी देखा है ना मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि आपको देख भी चुकी हूँ और आपसे मिल भी चुकी हूँ। हदीद, इसकी उलझन और बढ़ गई थी। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरा नाम कैसे, उसने पूछने की कोशिश की थी। सिर्फ नाम नहीं, और भी बहुत कुछ जानती हूँ, और जो नहीं जानती वो जान लेना चाहती हूँ, वो कुछ मुतजस्सिस होकर उसे देखने लगा था। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में, उसने चंद लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद मध्यम आवाज में कहा था। ये कि आप मुस्लिम हैं और ये भी कि आप अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया था, फिर उसने अपना चेहरा सोख होते हुए महसूस किया था। सो वॉट, इस बार इससे बात करते हुए उसके लहजे में तोशी थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो बगैर किसी दिक्कत के आपसे तुम पर आ गई थी। वो शायद इसकी बेतकल्लुफी से ज्यादा उसके सवाल पर हैरान हुआ था। इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? सवाल करते करते करंट की तरह एक सोच इसके जहन से टकराई थी। उसने बेख्तियार उसे दोबारा देखा था। मैं वाकई स्टूपिड हूँ, मैंने इस चीज पर गौर क्यों नहीं किया, मैं वो सोच रहा था। वो अपने चेहरे अंदाज और चादर ओढ़ने के तरीके से वहाँ इस चर्च में बैठे हुए लोगों का हिस्सा नहीं लग रही थी। क्या आप भी मुस्लिम हैं, उसने इसके चेहरे पर नजरें टिकाते हुए कहा था। वो शायद पहले ही सवाल की तवक्को कर रही थी, किसी हैरानगी के बगैर उसने कहा था। मैं मुसलमान होने की कोशिश कर रही हूँ, उसके जवाब ने चंद लम्हों के लिए हदीद को खामोश करवा दिया था। वो चुपचाप उलझन भरी आंखों नजरों से उसका चेहरा देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल था कि आप मुस्लिम हैं, मेरा मतलब है आप मुस्लिम लगती हैं। उसे लगा था लड़की के चेहरे पर एक साया लहराया था। सिर्फ नजर आती हूँ, नजर आने से क्या होता है, उसने बहुत अजीब लहजे में कहा था। नाम जान सकता हूँ आपका? क्रिस्टीना, उसने चंद लम्हों के बाद उसको अपना नाम बताया था। वो उस पर नजरें जमाए उसकी बात की सदाकत जानने की कोशिश करता रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कैसे जानती हैं, चंद लम्हों बाद उसने उससे पूछा था। क्रिस्टीना ने एक गहरी सांस ली थी। उस दिन मैंने आपको पार्क में देखा था, आप सिस्टर अलिजबेथ के पास आए थे, उसने हदीद को याद दहानी करवाई थी। हदीद ने गौर से उसे देखा मगर पहचान नहीं पाया। उस दिन वैसे भी वो जिस कैफियत में था शायद किसी को भी ना पहचान पाता, और सिस्टर्स के जिस ग्रुप के पास वो गया था वो खासा लंबा चौड़ा था। अब उनमें ये लड़की भी शामिल थी या नहीं वो नहीं जानता था, मगर उसने सर हिला दिया। हो सकता है आप वहां हो, मगर बहरहाल मैंने आपको नहीं देखा। सर्विस हो चुकी थी, उसने बिशप को चबूतरे पर जाते देखा था। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकते हैं? अदित ने एक मध्यम सरगोशी सुनी थी। मगर मैं यहाँ पर सर्विस अटेंड करने आया हूँ, इसने कुछ हिचकिचाते हुए इससे कहा था। प्लीज, इस बार इसकी आवाज इल्तिजाइया थी। वो कुछ देर इसका चेहरा तकता रहा और फिर खामोशी से खड़ा हो गया। नेव के बजाय NAVE के बजाय असिल AISLE से होकर वो बाहर आ गए थे। बाहर भी लोगों का एक बड़ा हुजूम था। यूं लग रहा था जैसे आवाजों और कहकों का एक तूफान आया हुआ था। मेरे साथ आओ, बाहर आते ही इसने क्रिस्टीना को कहते सुना था। वो खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। उसे कैथेड्रल के अपवी हिस्से में ले आई थी। उस तरफ निस्बतन खामोशी थी। वो वहां मौजूद एक बेंच पर बैठ गई। हदीद उसे देखता हुआ उसी बेंच पर बैठ गया। बेंच के करीब लैंप पोस्ट की रोशनी ने इन दोनों को बहुत नुमाया कर दिया था। तुम क्रिश्चियन क्यों होना चाहते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा था। तुम मुसलमान क्यों होना चाहती हो? सवाल का जवाब सवाल से दिया गया था। क्योंकि ये सच्चा मजहब है। मैं भी CHRISTIANITY ईसाइयत के बारे में यही सोचता हूँ। तुम गलत सोचते हो, इस्लाम के अलावा कोई मजहब सच्चा नहीं है। क्या मैं भी यही कहूँ कि तुम गलत सोचती हो? क्रिश्चियनिटी ईसाइयत के अलावा कोई रिलीजन मजहब सच्चा नहीं है। हदीद की साबित कदमी से कम नहीं थी। वो कुछ बेबसी से इसका चेहरा देखने लगी थी। तुम्हें अपने मजहब से इतनी नफरत क्यों है? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें अपने मजहब से इतनी नफरत क्यों है? हदीद ने एक बार फिर इसके सवाल का जवाब सवाल से दिया था। मुझे अपने मजहब से नफरत नहीं है, क्रिस्टीना ने हल्की आवाज में कहा था। फिर भी तुम अपना मजहब छोड़ देना चाहती हो? वो उसका चेहरा देखने लगी थी। इसलिए छोड़ देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सच्चाई पा ली है। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे तो आज तक अपने मजहब में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। मुझे अगर कहीं सच्चाई नजर आई है तो तुम्हारे मजहब में। वो जैसे एकदम फट पड़ा था। बार दफा जो चीज आपको नजर आती है वो फरेब होता है, नजर का धोखा, और जब तक ये बात पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर के ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे। मैं चाहती हूँ हदीद तुम्हारे साथ ये ना हो। हदीद ने इसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे मगर इसकी आवाज में लर्जिश थी। वो बेयकीनी के आलम में उसे देखने लगा था। आखिर ये मेरी इतनी हमदर्दियों बन रही है, उसने तलखी से सोचा था। बाजार में आप जब भी जाते हैं वहाँ मिलने वाली सबसे अच्छी चीज ही खरीदना चाहते हैं, सबसे पसंदीदा चीज ही पाना चाहते हैं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें किसी बाजार में जाना नहीं पड़ा मगर फिर भी तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन चीज है। इस्लाम तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन, तुम्हारा पैगम्बर और अल्लाह अकेला वाहिद, और अब तुम बेहतरीन चीज छोड़कर। हदीद ने तुर्शी से इसकी बात काट दी थी। क्रिस्टीना, मजहब बाजार में रखी हुई कोई चीज नहीं होता। मजहब सुकून देता है, इत्मीनान देता है। अगर कोई मजहब ये चीज नहीं कर पाता तो फिर क्यों छोड़ा ना जाए? दूसरा मजहब क्यों ना इख्तियार किया जाए? ये सारे मजहब खुदा के बनाए हुए हैं, हर एक अल्लाह की तलाश ही करवाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं मुस्लिम रहूं या क्रिश्चियन बन जाऊं या फिर कोई तीसरा मजहब इख्तियार कर लूं? फर्क पड़ता है हदीद, बहुत फर्क पड़ता है। तुम मोहम्मद को छोड़कर ईसा के फॉलोअर पैरोकार बनना चाहते हो, तुम खुदा की वहदानियत को छोड़कर टेरेंटी TRINITY पर ईमान लाना चाहते हो, तुम हर चीज रिप्लेस करना चाहते हो, हर चीज पैगंबर, दीन, खुदा, तुम सब कुछ गलत करना चाहते हो, सब कुछ गलत कर रहे हो। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तुम उनके बारे में सोचोगे नहीं तो सांस कैसे लोगे? तुम उनकी जगह किसी दूसरे को कैसे दोगे? चर्च के ऊपर लगा हुआ वो क्रॉस नजर आ रहा है तुम्हें, तुम्हें पता है वो क्या जाहिर कर रहा है? अगली बार जब तुम अपने सीने पर क्रॉस बनाओगे तो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे होगे? तुम अल्लाह का नाम ले रहे होगे, तुम उसको याद करोगे नहीं। हदीद, तुम जिसे याद करोगे वो खुदा नहीं होगा। खुदा तो वाहिद होता है, एक होता है, यकता होता है। क्रिस्टीना ने बुलंद आवाज में बात करते करते अपना हाथ उठाया था और हदीद के सीने पर होली क्रॉस बनाया था। तुम कहोगे फादर सन एंड द होली स्प्रिल। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली जानती है तुम क्या कर रहे हो? वो अभी खामोश होना नहीं चाहती थी, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे यकदम चुप होना पड़ा था। वो यक तक इसका चेहरा देखते देखते इसकी बातें सुनते सुनते एकदम फूट फूट कर रोने लगा था। बिल्कुल बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए वो अपने घुटनों पर झुक गया था। तुम नहीं समझ सकती कि मैं किन हालात में हूँ, कोई नहीं समझ सकता, तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ कंडम मतून कर सकते हो, CONDEMN, सिर्फ रिमार्क दे सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी, वो रोते हुए बुलंद आवाज में कह रहा था। उसने जिंदगी में किसी मर्द को रोते नहीं देखा था और इस तरह बच्चों की तरह बुलंद आवाज में रोना वो नहीं जानती थी कि किसी रोते हुए को किस तरह चुप करवाया जाता है, और अगर रोने वाला मर्द हो तो फिर किस तरह उसे दिलासा देना चाहिए। वो बेबसी से उसे रोते बिलकते और बोलते हुए देखती रही। वो कह रहा था, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं मर सकता। एक सर्द लहर उसके वजूद से गुजर गई थी। क्रिस्टीना को कोई याद आया था। काश मैं तुम्हारे लिए होती, सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी की आवाज इसके जहन में लहराई थी। वो बेख्तियार हदीद पर झुक गई थी। वो अब इस आवाज इस चेहरे को याद नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं। हदीद प्लीज मत रो, उसने एक हाथ इसकी पुश्त पर फैला दिया था, दूसरे हाथ से वो उसका सर सहलाने लगी थी। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वो चुप नहीं हुआ था, वो रोता रहा था बिलक बिलक कर, यूं जैसे वो जिंदगी में पहली बार रो रहा था। क्रिस्टीना को पता नहीं चला वो कितनी देर इसके पास बैठी इसका सर सहलाती रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका लरजता हुआ वजूद साकित हो गया था, फिर एकदम सीधा होकर बैठ गया था। क्रिस्टीना ने अपने हाथ में पकड़े हुए टिश्यू से इसके भीगे हुए चेहरे को खुश करना चाहा था। टिश्यू गाल पर लगती हदीद ने इसके हाथ से टिश्यू ले लिया था। इसे नजरें मिलाए बगैर उसने टिश्यू से अपनी आंखें साफ की थी। क्रिस्टीना ने देखा था इसके हाथ में लर्जिश थी। मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ, वो बेंच से उठने लगी थी तब हदीद ने इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज मेरे पास रहो, मैं इस वक्त अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज में लर्जिश थी। क्रिस्टीना रुक गई थी। हदीद ने इसका हाथ छोड़ दिया। बेंच की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। वो भी खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। हदीद ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा उसकी तरफ मोड़ा था और आंखें खोलकर उसे देखने लगा था। क्या तुम्हारी फैमिली जानती है कि तुम मुसलमान होना चाहती हो? क्रिस्टीना के लिए इसका सवाल गैर मुतवक्के था। हाँ, एक लम्हे की खामोशी के बाद इससे नजरें चुराते हुए इसने कहा था। क्या उन्हें कोई एतराज नहीं है? क्रिस्टीना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, वो उसे सिर्फ देख कर रह गई थी। हदीद, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्यों अपना मजहब छोड़ना चाहते हो? बहुत नर्म आवाज में इसने बात का मौजू बदल दिया था। क्रिस्टीना ने इसके चेहरे पर थकन देखी थी। हदीद ने एक बार फिर चेहरे को मोड़कर उसे देखा था और फिर पहले की तरह बेंच की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अपनी चादर को उसने अपने गिर कुछ और लपेट लिया था। फिर उसने हदीद के चेहरे को देखा था, वो इसी तरह आंखें बंद किए हुए था मगर अब वो कुछ कह रहा था। क्रिस्टीना ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी थी। वो जो कह रहा था वो सुन रही थी। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं खुदकुशी कर लेता, मैंने कभी, वो कह रहा था, दुनिया में तुमसे ज्यादा जलील औरत कोई दूसरी नहीं होगी, उसने पापा को चिल्लाते सुना था, और तुमसे ज्यादा जलील मर्द कोई दूसरा नहीं होगा, इस बार उसने मम्मी को पापा से भी ज्यादा बुलंद आवाज में धाड़ते सुना था। उसका दिल चाहता वो वहां से भाग जाए और दोबारा कभी वहां ना आए। मैंने तुमसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, तुम जैसी औरतें टाइम पास करने के लिए ठीक होती हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, काश मैं तुमसे कभी शादी ना करता। पापा ने कई बार कहा जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया था। वो कमरे में जाने के बजाय लाउंज में ही बैठ गया था। कमरे में इन दोनों का शोर ज्यादा नुमाया होता क्योंकि उसका कमरा उनके कमरे के करीब था। इस शादी पर तुम्हें मुझसे ज्यादा पछतावा नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स ने ठीक कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ रुपया है, दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों तंग थे और तंग हैं। तुम लोग ना खुद खुश रह सकते हो ना दूसरों को खुश देख सकते हो। असल में तुम जैलिस होते हो क्योंकि इस शहर इस मुल्क में मुझे जानने वाले लोग तुम्हारे जानने वालों से ज्यादा हैं, जानने वाले या चाहने वाले। हदीद ने सर उठाकर किचन के दरवाजे को देखा था, वहाँ मुलाजिम काम में मसरूफ थे। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि वो किस हद तक बातें सुन सकते थे। उसके वालिदैन की आवाज़ें यकीनन किचन तक जा रही थी मगर मुलाजमीन के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वो हज़्ब मामूल किचन में इधर उधर फिर का मामूल का काम निपटाने में मसरूफ थे, उनके लिए ये आवाजें नई नई थी। हदीद की तरह वो भी ये सब कुछ पिछले कई सालों से सुनते आ रहे थे। ठीक है, चाहने वाले ही समझ लो, तुम जैसी थर्ड क्लास ذہنیت रखने वाले इंसान से किसी अच्छी बात की तवक्को कैसी रखी जा सकती है। ये सब कुछ जो आज तुम्हारे पास है, ये इसी थर्ड क्लास ذہنیت वाले आदमी की वजह से है। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। जो तुमने मुझे दिया वो हर शौहर बीवी को देता है, बल्कि उसे बहुत ज्यादा देता है जितना तुमने मुझे दिया। आई विश मैंने तुम्हें कुछ ना दिया होता, मैंने तुम्हें घर के एक कमरे में बंद रखा होता, तुम्हें कभी बाहर ना जाने दिया होता। उसने पापा की बात पर मम्मी का एक तंजिया कहका सुना था। तुम 20वीं सदी में रहते हो बिलाल अली, 18वीं सदी में नहीं। तुम मुझे कैद कैसे कर सकते थे? मेरे जैसी औरत को एक कमरे में बंद करके कैसे रख सकते थे? तुम जानते हो जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहाँ तुम दर्शी के हवाले से जाने जाते हो। तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है वहाँ। मेरी वजह से तुम करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट हासिल। उसने पापा को मम्मी की बात काट कर चिल्लाते सुना था। मैं तुम्हारी वजह से कुछ हासिल नहीं करता, तुम्हारे हवाले से सिर्फ बदनामी और रुसवाई मिलती है मुझे। तुम्हारी आवारगी की वजह से लोगों के मजाक का निशाना बनता हूँ मैं तुम्हारे हवाले से पहचाना जाना नहीं चाहता। तुम अदा बन गई हो मेरी जिंदगी के लिए। हदीद का चेहरा सफेद होता जा रहा था। कुछ भी नया नहीं था, फिर भी हर बार इन लफ्जों की अजियत पहले से ज्यादा होती थी। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुनिए।